एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो पुणे के स्टूडियो से
आपका हार्दिक स्वागत है।
यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेवा है।
हमारे आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए एक प्रेरणादायक संदेश और प्रशंसा के गीत ले आए हैं।
आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने के लिए आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे।
आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो सुन रहे हैं आशा की वाणी।
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या bible@awr.org पर ईमेल करें।
इस डाक पते पर हमें लिखने के लिए आपका स्वागत है। एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर, पोस्ट बॉक्स 1446, मार्केट यार्ड पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल कर सकते हैं hindirsamc@sudavent.org। एक बार फिर ईमेल आईडी hindirsamc@sudavent.org पर।
आप इस नंबर पर आपकी बाइबल अध्ययन में रुचि और प्रार्थना अनुरोध के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9195-7285-9272।
आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए हमारी वेबसाइट awr.org पर भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं दोहराता हूँ awr.org या awr360 मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो AWR पुणे स्टूडियो से।
हमारे साथ हैं श्रीमान रॉबिन्सन आर कुजूर परमेश्वर का वचन प्रस्तुत करने के लिए।
परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आपके लिए एक मधुर गीत।
बरकतों की बारिशें, बरकतों की बारिशें वो देता हमको, खत्म ना होता जो जीवन देता हमको। बरकतों की बारिशें, बरकतों की बारिशें वो देता हमको, खत्म ना होता जो जीवन देता हमको। बरकतों की बारिशें, बरकतों की बारिशें वो देता हमको, खत्म ना होता जो जीवन देता हमको।
बरकतों की बारिशें वो देता हमको, बरकतों की बारिशें वो देता हमको, खत्म ना होता जो जीवन देता हमको, खत्म ना होता जो जीवन देता हमको।
सुन लो ऐ दुनिया के लोगों,
सुन लो ऐ दुनिया के लोगों,
सुन लो ऐ दुनिया के देने तुमको निजा।
बरकतों की बारिश है, बरकतों की बारिश है वो देता हमको, बरकतों की बारिश है वो देता हमको। खत्म ना होता जो जीवन देता हमको, खत्म ना होता जो
इकलौते बेटे को दिया,
देने हमको जीवन इकलौते बेटे को दिया।
ईश्वर ने इस जगत से, ईश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम किया,
ऐसा प्रेम किया।
देने हमको जीवन इकलौते बेटे को दिया। हम तो गिरे पाप कैद में थे, यीशु ने हमको छुड़ाया।
बरकतों की बारिश है वो देता हमको, बरकतों की बारिश है वो देता हमको। खत्म ना होता जो जीवन देता हमको, खत्म ना होता जो जीवन।
अब समय है परमेश्वर का वचन सुनने का।
नमस्कार प्रिय श्रोताओं, मैं भाई रॉबिन्सन कुजूर, परमेश्वर का सेवक, परमेश्वर का वचन लेकर आपके पास आता हूँ। आए हम उसका वचन सुनने से पहले परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें। ये हमारे महान दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं, हम तेरे वचनों को सुनने जा रहे हैं पिता। हमारे मनों को और हमारे हृदय को खोल दे ताकि हम तेरे वचनों को समझ सके। विशेषकर मेरे श्रोताओं के संग पिता, उन्हें तेरा वचन को समझने और तेरा राह में चलने के लिए मदद कर और तेरा वचन से आशीष दे। पिता परमेश्वर मेरे संग हो, तेरा आत्मा दे ताकि मैं तेरे सामर्थ के द्वारा तेरे वचनों को प्रस्तुत कर सकूं। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं, सुन और ग्रहण करें, आमीन। प्यारो, आज का मेरा संवाद का शीर्षक है दो द्वार। आइए हम यीशु मसीह का वचन पढ़े जो मत्ती 7:13 में लिखा है। उसने कहा, सके द्वार से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को ले जाता है, और बहुत से लोग हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। प्यारो, परमेश्वर चाहता है कि उसके बच्चे समृद्ध हों आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक रूप से। अपने वचन में वह खुशी के लिए नुस्खा बताता है। परमेश्वर की योजना का पालन करके हम खुशी चुन सकते हैं इस दुनिया में और आने वाली दुनिया में भी। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपनी कविता द रोड नॉट टेकन में ऐसा लिखा है, जंगल में दो रास्ते अलग हो गए और मैंने वह रास्ता चुना जिस पर कम लोग यात्रा करते थे, और इसी से सारा अंतर आ गया। दो रास्तों या द्वारों की अवधारणा, एक चौड़ा और आकर्षक, दूसरा संकीर्ण और भयावह, धर्मनिरपेक्ष और धार्मिक साहित्य दोनों में आम है। आमतौर पर दो रास्तों का रूपक ईश्वर की इच्छा के विपरीत हमारी स्वयं की इच्छा के साथ संघर्ष को संदर्भित करता है। ऐसे समय में जब बहुत से ईसाई ईश्वर की क्षमा और उद्धार के वादे के बारे में कुछ अस्पष्ट धारणाएं रखने में ही संतुष्ट महसूस करते हैं, एडवेंटिस्ट कलिसिया इसके बिल्कुल विपरीत खड़े हैं। हमारा संदेश न केवल वांछनीयता की बात करता है बल्कि वास्तविक चरित्र विकास की संभावना की भी बात करता है। अभी इसी जीवन में हमारा मानना है कि ईश्वर प्रतिदिन हमें क्षमा और शक्ति प्रदान करता है, जिसकी हमें अपने जीवन में मसीह जैसे परिवर्तन करने के लिए आवश्यकता होती है। जो तुम देखते हो वह तुम्हें नहीं मिलता, कहता है नीति वचन 14 का 12 में। ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक देख पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। चुनाव और स्वाद मसीह जैसा जीवन जीने की हमारी क्षमता को कमजोर कर सकते हैं। जितना ज्यादा हम स्वार्थी रूप से इनका पालन करते हैं, उतना ही किसी भी परिस्थिति में सही निर्णय लेना मुश्किल होता है। यही बात फरीसियों के साथ हुई। उन्हें पता नहीं था कि शैतान ने उनके मूल्यों और विशेषताओं को इस हद तक बदल दिया था कि जब वे सोचते थे कि वे परमेश्वर की इच्छा पूरी कर रहे हैं, तो वे और भी शैतानी व्यवहार करने लगे। या यीशु मसीह के समय के धार्मिक अगुए और फरीसियों के संग हुआ करता था। भजन संहिता का भजन 1 में दो रास्तों के बारे में बताया गया है जिन पर धर्मी और अधर्मी लोग चलते हैं। हम कौन सा संकेत देख सकते हैं जो एक रास्ते को सुखदायक और दूसरे को दुखदायी बनाता है? ईश्वर स्वतंत्रता का सम्मान करता है, लेकिन हमारे कार्यों के परिणाम होते हैं। मृत्यु की ओर ले जाने वाले मार्ग पर सभी जगह पीड़ा और दंड है, दुख और निराशाएं हैं, आगे ना बढ़ने की चेतावनियां हैं। ईश्वर के प्रेम ने लापरवाह और हठी लोगों के लिए खुद को नष्ट करना कठिन बना दिया है। प्यारो, इसके विपरीत संकीर्ण मार्ग लाभदायक हो सकता है। ईश्वर हमसे यह अपेक्षा नहीं करता है कि हम कुछ त्याग दें जो हमारे सर्वोत्तम हित में है। यह सोचना गलत है कि ईश्वर अपने बच्चों को कष्ट में देखकर प्रसन्न होते हैं। सारा स्वर्ग मनुष्य की खुशी में रुचि है। प्यारो, हमारा स्वर्गीय पिता अपने किसी भी प्राणी के लिए खुशी के रास्ते बंद नहीं करता। ईश्वरीय अपेक्षाएं हमें उन भोगों से दूर रहने के लिए कहती हैं जो दुख और निराशा लाते हैं, जो हमारे लिए खुशी और स्वर्ग के द्वार बंद कर देते हैं। शैतान हमें इस धरती की चीजों पर अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए कई तरह के धूर्त तरीकों से प्रयास करता है। वह हमें स्वर्गीय चीजों से दूर करने के लिए कुछ भी करने में सक्षम है। उसका मोहक लालच तथा कथित खुशी का वादा करना है, फिर भी वह हमें यह नहीं बताता है कि वह हमसे कितनी भयानक कीमत वसूलेगा, क्योंकि जिसे वह मजा कहता है वह न केवल हमें इस जीवन में कड़वा स्वाद देगा बल्कि अंततः हमें अनंत जीवन की कीमत चुकानी पड़ेगी। दूसरी ओर मसीह हमें सच्ची खुशी और भरपूर जीवन प्रदान करता है, जो न केवल हमें इस जीवन में अच्छा स्वाद देता है बल्कि हमें उसके साथ अनंत जीवन की ओर भी ले जाता है। बातों पर गहराई से विचार करें। यूहन्ना 17:3, जो लोग स्वर्ग जाएंगे वे हर धार्मिक विषय पर एक जैसा नहीं सोचते। प्रत्येक व्यक्ति की विशिष्ट आध्यात्मिक जरूरतें होती हैं। प्रत्येक व्यक्ति किसी दिए गए सिद्धांत के अलग अलग पहलू पर जोर दे सकता है। लूका 24 का 25 से 27 और 44 से 48 में हमें यह समझने में मदद करते हैं कि पवित्र शास्त्र की सही व्याख्या जीवन के द्वार में प्रवेश करने से संबंध है। प्यारो, मृत्यु के मार्ग पर पूरी मानव जाति जा सकती है। अपनी सारी सांसारिकता, अपने सारे स्वार्थ, अपने सारे अभिमान, बेईमानी और नैतिक पतन के साथ हर व्यक्ति के विचारों और सिद्धांतों के लिए जगह है। अपनी प्रवृत्तियों का पालन करने के लिए जगह है। जो भी उसका स्वार्थीपन तय करता है उसे करने के लिए जगह है। विनाश की ओर ले जाने वाले मार्ग पर जाने के लिए रास्ते की तलाश करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि द्वार चौड़ा है। चौड़े दरवाजे में सिर्फ यह मायने नहीं रखता कि हम क्या सोचते हैं, बल्कि यह भी मायने नहीं रखता कि हम सोचते हैं या नहीं, या फिर हम दूसरों को हमारे लिए सोचने देते हैं और हमें अपनी दिशा में खींचते हैं। साथियों का दबाव यहाँ एक बड़ी भूमिका निभाता है। जो लोकप्रिय है वही करो, भीड़ का अनुसरण करो, यह कहते हैं। यह स्थिति कि मनुष्य क्या विश्वास करता है इसका कोई महत्व नहीं है, शैतान के सबसे सफल धोखे में से एक बात है। वह जानता है कि प्रेम में प्राप्त सत्य प्राप्तकर्ता की आत्मा को पवित्र करता है, इसलिए वह लगातार झूठे सिद्धांतों, दंत कथाओं, दूसरे सुसमाचार को प्रतिस्थापित करने की कोशिश कर रहा है। आत्मसंयम जरूरी है। नीति वचन 25:28। आत्मनियंत्रण के बिना व्यक्ति को दो आध्यात्मिक समस्याएं होती हैं, बाहर से भी और भीतर से भी। ऐसा व्यक्ति बिना दीवारों वाले शहर की तरह होता है जो हर तरफ से बाहरी प्रलोभनों और हमलों के आगे झुक जाता है। अंदर से वह एक ढह चुके शहर की तरह होता है जिसमें प्रतिरोध करने की कोई आंतरिक शक्ति नहीं होती। नशीली दवाओं, शराब, सम्मोहन और अध्यात्मवाद जैसी घटनाओं के खिलाफ ईसाइयों का तर्क इस विश्वास पर आधारित है कि ये किसी व्यक्ति की आत्मनिर्णय की क्षमता का उल्लंघन करते हैं। व्यक्तिगत पूर्णता की संभावना व्यक्ति के आत्म अनुशासन की मात्रा से संबंधित है। ईसाई अपनी इच्छा को ईश्वर के सामने समर्पित करके आत्म अनुशासन में सफलता पाते हैं। स्वयं के विरुद्ध लड़ाई में इच्छा शक्ति हमारी मदद कैसे कर सकती है? जब आप फिलिपियों 2:12-13 का अध्ययन ध्यानपूर्वक करेंगे तो पाएंगे कि इसमें परमेश्वर का क्या हिस्सा है और हमारा क्या हिस्सा है। हम पूरी मन से परमेश्वर का काम करने और उसके पीछे चलने, उसकी आज्ञाओं को मानने की कोशिश करें, परमेश्वर हमें मदद करेगा। ईसाई जीवन एक युद्ध और एक मार्च है, लेकिन जो जीत हासिल की जानी है वह मानवीय शक्ति से नहीं जीती जा सकती। संघर्ष का क्षेत्र हृदय का क्षेत्र है। हमें जो लड़ाई लड़नी है वह सबसे बड़ी लड़ाई जो मनुष्य ने कभी लड़ी है वह है ईश्वर की इच्छा के प्रति स्वयं का समर्पण, प्रेम की संप्रभुता के प्रति हृदय का समर्पण। रक्त और शरीर की इच्छा से पैदा हुआ पुराना स्वभाव ईश्वर के राज्य उत्तराधिकारी नहीं बन सकता। वंशानुगत प्रवृत्तियां, पुरानी आदतें त्यागनी होगी। आत्मसंयम और आत्मा के फल के सभी अनुग्रहों की सूची की परिणति का संबंध है। कलातियों 5:22-23। लेकिन अपने आप को नियंत्रित करने का मतलब सिर्फ इनकार और अभाव का जीवन जीना नहीं है प्यारो। हमें इसे नकारात्मक दृष्टिकोण से नहीं बल्कि सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। बल्कि इसका मतलब है कि परमेश्वर हमारे जीवन को नियंत्रित करता है, क्योंकि हम सृष्टि और उद्धार के द्वारा उसके हैं और उसका नियंत्रण हमें अपने जीवन पर सच्चा आत्मनियंत्रण रखने में सक्षम बनाता है। आप परमेश्वर की इच्छा को समझने के लिए प्रार्थना और बाइबल अध्ययन में कितना समय बिताते हैं? लूका 13:24 में हम संघर्षशील के विषय में पढ़ते हैं। हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां परमेश्वर के प्रति प्रेमपूर्ण आज्ञाकारिता का जीवन जीने के प्रयास पर कम जोर दिया जाता है। फिर भी लूका कहता है, सक्रिय द्वार से प्रवेश करने का प्रयास करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ बहुत से लोग प्रवेश करना चाहेंगे और ना कर सकेंगे। लूका 13:24। यह आश्चर्यजनक है कि लोग अपने कैरियर में सफल होने, पुरस्कार जीतने, पैसा कमाने के लिए कितना प्रयास करते हैं, फिर भी वे अपने शाश्वत उद्धार के लिए कितना प्रयास करते हैं। ईसाई आध्यात्मिक पराजय में जीते हैं, क्योंकि वे अन्य कार्यों की तुलना में परमेश्वर को शायद ही कोई मौका देते हैं। कल्पना करें कि यदि वे इतनी रुचि और प्रयास के साथ परमेश्वर तक पहुंचते हैं तो उनके आध्यात्मिक जीवन में क्या होगा। पौलुस कहते हैं, जो लिखा है फिलिप्पियों 3:14 पद में, मैं निशाने की ओर दौड़ता हूँ मसीह यीशु में परमेश्वर की ऊंची बुलाहट के पुरस्कार के लिए। गलाती 2:20 में वह कहता है, मैं अपने आप को और जगत को प्रभु यीशु मसीह के क्रूस में लटका दिया है ताकि वह पुराने बातों को छोड़ करके नया जीवन यापन करे। हमें प्रयास करने और आगे बढ़ने की जरूरत है प्यारों, हाँ, लेकिन केवल प्रभु यीशु की शक्ति में। हमें विश्वास की लड़ाई लड़ने की जरूरत है जहाँ यह वास्तव में मायने रखता है, मसीह के साथ हमारी एकता को बनाए रखने के लिए। ऐसा केवल बहुत प्रार्थना और खुद को उसके प्रति दैनिक समर्पण के माध्यम से पूरा किया जाएगा। जब परमेश्वर की आज्ञा मानने की इच्छा हृदय में होती है, जब इस उद्देश्य के लिए प्रयास किए जाते हैं, तो यीशु इस प्रवृत्ति और प्रयास को मनुष्य की सर्वोत्तम सेवा के रूप में स्वीकार करते हैं और वे अपनी दिव्य योग्यता से इस कमी को पूरा करते हैं। लिखा गया है चैनियत संदेश खंड 1:382 में। यीशु कहता है, मेरे पास आओ, ये लिखा है मत्ती 11:28 में। आध्यात्मिक विजय का रहस्य मसीह के व्यक्तिगत निमंत्रण में पाया जाता है, मेरे पास आओ। वह चाहता है कि हम किसी और के पास ना जाएं, बल्कि उसके पास जाएं। और जब हम समर्पण के साथ उसके पास जाते हैं तो वह हमें सच्चा विश्राम और पुनर्स्थापना पाने के अपने तरीके सिखाएगा। यह विरोधाभासी है, लेकिन सच है कि स्वयं को नकारने से व्यक्तिगत स्वतंत्रता बढ़ती है और इसलिए शांति और संतुष्टि मिलती है। ऐसा नहीं है कि स्वयं को नकारने का मतलब एक सिकुड़ा हुआ और उथला जीवन जीना है। इसके विपरीत, अगर हम मसीह के पास आते हैं तो वह हमें वास्तव में स्वतंत्र बना देगा और हमें अपने अद्भुत आदर्शों को विकसित करने और उन तक पहुंचने में मदद करेगा। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके दिल चिंता के बोझ तले दबे हुए हैं, क्योंकि वे दुनिया के मानक तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। उन्होंने इसकी सेवा को चुना है, इसकी उलझनों को स्वीकार किया है, इसके रीति रिवाजों को अपनाया है। इस प्रकार उनका चरित्र खराब हो गया है और उनका जीवन थकावट बन गया है। महत्वाकांक्षा और सांसारिक इच्छाओं को संतुष्ट करने के लिए वे विवेक को घायल करते हैं और खुद पर पश्चाताप का अतिरिक्त बोझ लाते हैं। इस जीवन की चुनौतियों के सक्रिय रास्ते पर चलने में हमारी एकमात्र सच्ची मदद हमें परमेश्वर की ओर विश्वास से देखने पर होता है। इब्रानियों 12:2-3 में हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह हमारा विश्वास का स्रोत है और अंत भी है। जब हम उसके विश्वासी लोगों को, उनके संतों को देखेंगे, कैसे वे यीशु में विश्वास करके बीते समय में जिए हैं, हमारा हौसला बढ़ेगा, हमारा विश्वास बढ़ेगा और हम मसीह के साथ विश्वासता से और दृढ़ता से सच्चाई के मार्ग में चलने में मजबूत होंगे। हमें बचाने की खुशी के लिए मसीह ने शर्म और क्रूस को सहा। यह कितना अद्भुत विचार है, उसने आपके लिए और मेरे लिए यह सब सहा है प्यारों। वह कहता है, तुम्हारी जो भी चिंताएं और परेशानियां हो, उसके सामने, प्रभु के सामने अपनी बातें रखो। जितना अधिक हम स्वयं को कमजोर और असहाय समझेंगे, उसकी शक्ति में हम उतने ही अधिक मजबूत हो जाएंगे प्यारों। मसीह धर्म के महान सिद्धांतों में से एक यह है कि ईश्वर अपने मित्रों से ऐसा कुछ भी करने के लिए नहीं कहेगा जो वह स्वयं नहीं करना चाहता है। यीशु का जीवन इस बात को सत्य सिद्ध करता है। ईश्वर अपने प्राणियों से केवल वही मांगता है जो उनके सर्वोत्तम संभव लाभ के लिए हो। चौड़े रास्ते पर बहुत से लोग हैं जो जिस रास्ते पर चल रहे हैं उसे पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। वे संकीर्ण मार्ग और संकीर्ण द्वार की ओर देखते हैं, लेकिन स्वार्थी आनंद, संसार का प्रेम, अभिमान और पवित्र महत्वाकांक्षा उनके और उद्धारकर्ता के बीच एक बाधा खड़ी कर देते हैं। वे अच्छाई की इच्छा करते हैं, वे इसे प्राप्त करने के लिए कुछ प्रयास करते हैं, लेकिन वे इसे चुनते नहीं हैं। उनके पास सभी चीजों की कीमत पर इसे सुरक्षित करने का कोई निश्चित उद्देश्य नहीं है। प्यारो, परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह के बलिदान के माध्यम से हमारे लिए उद्धार प्राप्त करना संभव बनाया है। यह एक मुफ्त उपहार के रूप में दिया जाता है और हम इसे स्वीकार या अस्वीकार करना चुन सकते हैं। हालांकि स्वर्ग का मार्ग एक सक्रिय मार्ग है, उस सक्रिय मार्ग पर सुरक्षित रूप से यात्रा करने के लिए हमें पाप और स्वार्थ के बोझ को अलग रखने और अपनी आंखें यीशु पर टिकाए रखने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो आइए प्यारों, हम सब पाप और स्वार्थ को किनारे करके यीशु पर अपना आंख लगाए और उसके पीछे चले, उसके रास्ता में चले। परमेश्वर हमें उसके रास्ता में चलने के लिए मदद करेगा। दुनिया का रास्ता चौड़ा है, आराम है, लेकिन वह विनाश को ले जाती है। यीशु मसीह का रास्ता सकरा है, संकीर्ण है, लेकिन वह हमें अनंत जीवन को ले जाता है। आइए हम यीशु मसीह का मार्ग चुने। परमेश्वर का आत्मा हमें मदद करे और परमेश्वर का आत्मा आपके साथ रहे। आप सबको परमेश्वर की आशीष मिले। आइए हम प्रार्थना करें। ये हमारे महान पवित्र परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं, हम तेरी उपासना करते हैं। पिता परमेश्वर, तू हमारा परमेश्वर सृष्टिकर्ता उद्धार करता है। तू हमें प्रभु यीशु मसीह में रास्ता दिखाया है, जीवन का मार्ग। हमें उस संकीर्ण रास्ता को चुनने के लिए मदद कर, जो हमें अंतत अनंत जीवन और स्वर्ग ले जाता है। पिता परमेश्वर, हमें ऐसा बुद्धि दे, मेरा पवित्र आत्मा दे, हम सबन को
इसके साथ ही हम लगभग अपने प्रसारण के समाप्ति पर आ गए हैं। परमेश्वर के वचन को अधिक जानने के लिए आप हमेशा हमें 1800833231 पर संपर्क करें या हमें bible@awr.org पर ईमेल करें।
हमारा डाक पता है AWR Adventist World Radio, पोस्ट बॉक्स 1446, पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं hindiarsamc@sudavenTIST.org।
मैं हूँ गौरव चौहान
और मैं हूँ सारा मंडोरा। AWR से विदा लेते हैं।
अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिर से हमसे जुड़े,
तब तक हम आपको अलविदा और ईश्वर के आशीर्वाद की कामना करते हैं।